अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होने के कारण उस तेल में सैकड़ों भंवरें उठ रही थी। सुधन्वा ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रार्थना की थी उसे अब एकाग्रचित होकर के आप लोग सुनिए। सुधन्वा ने क्या प्रार्थना की? सुधन्वा प्राह गोविंदम प्रथमं यादृशं वचहं तत्तेहं कथयिष्यामि शृणुस्व कैमनानृप। ज्वालाकुलं वीक्ष तैलं आवर्त सत संकुलं। अब देखो सुधन्वा ने क्या कहा, हरे गोविंद रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैंने जो ऐसी प्रार्थना की थी उसे सुनकर भी आप जिस कारण से मेरी रक्षा के लिए नहीं पधारे ये कारण मुझे पता चल गया। मैंने आपसे प्रार्थना की रक्षा करने के लिए और आप नहीं आए तो मुझे पता चल गया कि किस कारण से आप नहीं आ रहे मेरी रक्षा करने के लिए। त्राहि त्राहि ते गोविंद मयायं बाधितं वचनं श्रुत्वा त्वं नागतो यस्मात् विज्ञातं कारणं हरे। तो आपने क्या सोचा कि पहले तो ये सुधन्वा यहां आने पर भी मेरी अवहेलना करके काम का भक्त हो गया और अब संकट पड़ने पर मुझ जगत गुरु का स्मरण करने चला है ना? सुधन्वा कह रहा है कि भगवान आप इसलिए नहीं आए मेरी रक्षा करने के लिए कि मैंने पहले आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और अब कष्ट पड़ने पर आपको बुला रहा हूं तो आप नहीं आ रहे हो। माम भज्ञाय संप्राप्तम सुधन्वा कामचार कहां पश्चात स्मरति पापिष्ठा संकट जगन गुरु। इसी से मैं सच कहता हूं कि जो लोग केवल भय से व्याकुल होकर कष्ट में पड़कर ही आपका स्मरण करते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। भगवान नहीं उसका दुख दूर कर दे। स्मरण देख पतितन त्वामे वे भय वे भला जनाना सुख संयोगता सत्यमे तन वदाम्य हम। और सुधन्वा क्या कह रहे हैं, मैं परिणाम में कष्ट देने वाले अपने उस सुख को जो श्री हरि की भक्ति से हीन है धिक्कार के योग्य मानता हूं। प्रहलाद गजराज ध्रुव द्रौपदी और अन्य गोप आदि भी तो संसार में आपत्ति के समय श्री कृष्ण का स्मरण करते आए हैं परंतु उन लोगों ने पहले भी आपका स्मरण किया था इसी से विपत्ति के समय आपने उनकी रक्षा की। क्या कह रहे हैं, जिन्होंने पहले भी आपका स्मरण किया तो विपत्ति में फिर आपने उनकी रक्षा की, पहले कभी स्मरण नहीं किया विपत्ति में पढ़ के स्मरण करते हैं है ना। धिंग में सौख्यम कृत्रोपम मन्ने हरि विवर्जितम प्रहरादो गज मुख्यशा ध्रुवा प्रसत नंदिनी अन्य गोपादयो लोके स्मरन्त्यापत्सु केशवम पूर्वम स्मृतोऽसि तैरेव त्रातास्ते कृत्रतस्त्वया। आप सुधन्वा कह रहे हैं अंतकाल में आपका ध्यान मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला होता है तो इसलिए आपके नाम का चिंतन करने से मेरी मुक्ति तो अवश्य हो जाएगी, मुझे इसकी चिंता नहीं। परंतु संसार में लोग मेरी निंदा करेंगे कि सुधन्वा वीर होकर भी कड़ाहे में जलकर दूषित मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मतलब कृष्ण और अर्जुन के साथ उसने युद्ध नहीं किया, तो लोग मेरी निंदा करेंगे इस बात की मुझे चिंता है। तो आज युद्ध स्थल में अपने पराक्रम से श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों वीरों को संतुष्ट ना कर सका और ना ही गांडीव धनुष से छूटे बाणों द्वारा इसका शरीर ही छिन्न भिन्न हुआ, तो ये मेरे शरीर का जो है क्या हो गया, निरर्थक हो गया मेरा शरीर कि अर्जुन के बाणों से मेरा शरीर छिन्न भिन्न नहीं हुआ। ये मन से श्री कृष्ण और अर्जुन का ध्यान भी नहीं कर पाया और ना इसने बहुत ही सेना का संहार किया, समर्थ होते हुए सुधन्वा की गति एक चोर के समान हुई है, चोर के समान मरा सुधन्वा, तो ये मेरे लिए मतलब दुख की बात है। ऐसी बहुत सी बातें कहकर लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, अतः हरे आज इस अग्निदाह से आप मेरी रक्षा करने की कृपा करें। ये दृश्य अर्भव वीरवाक्य प्रशिष्यन्ति माम जना वैनी दाहा हद्य हरे माम तुम रक्षितुम अर्हसि। कौरव सभा में लज्जा रूपी समुद्र में पड़ी हुई द्रौपदी का पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने आपने ही वस्त्रावतार धारण कर उद्धार किया था। द्रौपदी वस्त्र रूपेण लज्जा दो पतिता द्रता त्वया कृष्णेन सदसि समक्षम द्रोणे भीष्मयो। तो फिर क्या हुआ, वीर सुधन्वा की ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से तेल क्या हो गया, शीतल हो गया। देखो उबल रहा था तेल और शीतल हो गया। और खोलते हुए तेल में सुधन्वा कुंडलधारी और सुंदर नेत्रों से सुशोभित मुख को विकसित देखकर सभी लोग आश्चर्य करने लगे। कुछ लोग सुधर्मा के दुख से दुखी होकर आंसू बहाने लगे, कोई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, दूसरे दोनों हाथों से छाती पीटने लगे, कुछ लोग हाय हाय करके विलाप करने लगे और मस्तक से अपने मुकुट को उतार कर फेंकने लगे, और कोई कोई अपने हाथों को हिलाकर मना करते हुए कहने लगे, ये राजा सुधर्मा के बदले हम लोगों को ही अग्नि में क्यों नहीं झोंक देते, हम लोग भगवान श्री कृष्ण शरणाश्रित भक्त अर्जुन की शरण में जाते हैं। सर्वे जनास्तम प्रसमीक्ष तैरे यथा जले पंकजवन प्रफुल्लम सुधन्वना कुंडलिनम सुनेत्रम विशिष्मयुश्चानम दुखान अश्रूणि मुंचन्ति पतन्ति भूमौ वक्षाकराभ्याम अभिताडयन्ति प्रोशन्ति हाहेति किरीटकम् च क्षिपन्ति बाहून् परिधूनयन्ति वदन्ति राजा किमसौ न चास्मान् सुधन्वनोऽर्थे क्षिपतोऽग्नि मध्ये गच्छेम देवं यदुनन्दनं तं धनञ्जयं कृष्णपदे प्रपन्नम्। उस समय शंख और लिखित मुनि के साथ राजा हंसध्वज ने देखा कि मेरा पुत्र सुधन्वा भगवान के गोविंद दामोदर माधव आदि पावन नामों का जप करता हुआ उस कड़ाहे में तैर रहा है। हंसध्वज शंखयुतो तदर्शन पुत्रम कटाहे कृतरम तमेनम पुण्यानि नामानि हरेर जपंतम गोविंद दामोदर माधवेति। अब शंख मुनि ने राजा से पूछा, राजन क्या बात है, दहकती हुई आग से तेल गर्म नहीं हुआ या तुम्हारा पुत्र कोई अग्निशामक औषध या उत्तम मंत्र का जप कर रहा है, क्यों नहीं जल रहा, देखो कहां तो खोलता हुआ तेल और कहां इसका मुख जो उसमें पड़कर भी प्रफुल्लित कमल की भांति तेज से झलमला रहा है, अथा दूध इस कड़ाहे में एक नया नारियल का फल डाले, इससे तेल की परीक्षा होगी, तेल उबल रहा है कि नहीं तो नारियल का फल डालो क्योंकि ये तो इसका मुंह तो बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहा है कमल के समान। तब मुनि की अत्यंत तीखे वचन सुनकर वे दूध भी तेल की भांति संतप्त हो गए, बहुत गुस्सा आया कि मुनि जो ना संदेह कर रहा है, तो एक नारियल का फल लाकर शंख मुनि की आंखों के सामने ही तेल में डाल दिया, तो नारियल तलाक से फूटा, उसके दो टुकड़े हो गए और वे दोनों टुकड़े कड़ाहे से उछले, जैसे में एक टुकड़ा शंख के ललाट में और दूसरा टुकड़ा लिखित के ललाट में जोर से लगा और कड़ाहे से तेल की धाराएं उछलने लगी, उबल रहा था तेल। शंख और लिखित जो है ना, जो दो मुनि थे जो संदेह कर रहे थे, दोनों के माथे में लगा कि संदेह कर रहे थे वो, इसलिए महाबली सुधन्वा उस कड़ाहे से कैसे जीता जागता बच निकला और फिर कैसे अर्जुन के पास युद्ध के लिए गया, जन्मेजय पूछ रहे हैं। तो ये सब बातें मुझे बताइए, जैमिनी जी से जन्मेजय ने पूछा। तो जैमिनी जी बोले, तब शंख ने सुधन्वा को तेल के बीच में अक्षत देकर नौकरों से पूछा, जिस समय यह वीर कलाहे में डाला गया उस समय इसने किसका स्मरण किया, अथवा इसने किसी औषधि की जड़ तो अपने शरीर में नहीं बांधी, कोई दवाई शरीर में बांधी है क्या? तो दूतों ने उत्तर दिया, महामती भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के अतिरिक्त हमने राजकुमार को कोई भी मंत्र जपते नहीं देखा, हाँ इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य किया था, जिनके स्मरण मात्र से संसार में जीव जन्म मरण के संकट से छूट जाते हैं, जो दूत हैं वो कह रहे हैं और कुछ उन्होंने स्मरण नहीं किया। नान्यत् स्मृतम् किञ्चिदेव विना कृष्णम् महामतिम् यस्य स्मरण मात्रेण मुच्यन्ते योनि संकटान् प्राणिनो भूतले ब्रह्मन् संस्मृतो माधवो मुनान्। अत्यंत सत्वशाली सुधन्वा के उन फड़कते हुए ओठों को तो देखो जो अभी भगवान श्री कृष्ण के नामों का सतत स्मरण कर रहे हैं। पश्योष्टो स्मरणो तुम संग माधव भाषिणो सुधन्वनोति संतस्य प्रियादष्टो समागमे। तो शंख मुनि ने कहा, यदि कड़ाहे में डाले जाते समय इस साधु स्वभाव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया था तो मुझे धिक्कार है, जो कठोर हृदय होकर समीप ही खड़ा होकर इस बालक को देख रहा हूं, अतः अब मैं इस तप्त तेल के कड़ाहे में कूदकर अपने शरीर का प्रायश्चित करूंगा, अपने शरीर को नष्ट करूंगा, मैंने बड़ा अपराध किया है। स्मृतो यद् यमुना विष्णु पातिमानेन साधुनां दिगहं कठिनो बालं पश्यामि निकटस्थितां प्रायश्चित्तं स्वदेहस्य करिष्ये मरणान्तिकम्। इतना कहकर शंख मुनि तेल के कड़ाहे में कूद पड़े और सुधन्वा को छाती लगाकर यो कहने लगे, एतावदुक्त्वा वचनं तैल मध्ये पपातसा समालिंगे सुधन्वानम इदं वचनम् अब्रवीम्। प्रिय राजकुमार, तुम श्रेष्ठ क्षत्रियवीर हो और मैं अधम हूँ, ब्राह्मण कहलाने योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझ निष्ठुर हृदय ने तुम्हें उबलते हुए तेल में डलवाया है। संसार में उन्हीं मूर्खों को नित्य दुखों की प्राप्ति होती है जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करते। भवन्ते ते तापियोताम येन अभिन्दन्ति माधवम यत श्री कामश्च यत श्री काश्च मूढ़ाश्च नित्यं दुःखे समन्विताम। जो भाग्यवान पुरुष सर्व काम फलदाता भगवान गोविंद का स्मरण करते हैं वे तीनों तापों से मुक्त होकर सर्वदा सुखी हो जाते हैं। ये स्मरन्ति च गोविंदम सर्व कामे फले प्रदम ताप त्रय विनिर्मुक्ता जायन्ते दुःखे वर्जिता। भला अग्नि में इतनी शक्ति कहाँ है जो तुम जैसे परम वैष्णव को जला सके, क्योंकि जिन गुरु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मुनियों को भी दुर्लभ है, जिन्होंने एक दिन अग्नि शिखा से जलते हुए प्रहलाद की रक्षा की थी, उन्हीं का तुमने इस प्राणांत के समय मन और वाणी से भी स्मरण कर लिया। कथम तुम वै निनादग्धुम सक्या परम वैष्णव मुनियो यम न पश्यन्ति सुरासु गुरु हरिं चेतसापि त्वया वाचा प्राणान्ते संवृतो अधुना प्रहरादो रक्षितो येन दग्धस्तस्मान्वताशनम्। पुरुष सिंह तुम्हारे शरीर का स्पर्श प्राप्त होने से आज मेरा यह अधम शरीर भी पवित्र हो गया। पवित्र होने का इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है क्या? भक्त के शरीर का स्पर्श करना, इससे बढ़कर के और पवित्र होने का उपाय कोई नहीं है। तो शरीर से संपर्कात पावनम एवं पुष्पितम जातम पुरुष सारधूल नोपायो न्योस्ति पावनम। उठो और तेल से बाहर निकलकर अपने पिता राजा हंसध्वज को और उनकी सेना को पवित्र करो, साथ ही मेरा भी उद्धार करो। वीर भगवान श्री कृष्ण जिस अपने भक्त अर्जुन का सारथ्य करते हैं, उस अर्जुन के साथ आज रणांगण में यथोचित युद्ध करो और अपने यश को स्थायी बनाकर तत्पश्चात मंगल के भागी हो। कृष्णोयम पांडवस्यार्थे सारथ्यम प्रकरोति च अर्जुनेनादय संग्रामं कुरु वीरे यथोचितं यथा स्थिरं सुखं कृत्वा पश्चात् प्राप्नुहि मंगलम्। फिर शंख जो है राजा हंसध्वज से कहते हैं कि राजन अपने सनातन पुत्र को देखिए, इसने अपने मुख में भगवान नाम को धारण कर लिया था और नरसिंह नामक मंत्र का जप करके अपने शरीर की रक्षा कर ली है, इसने मुझे पवित्र बना दिया है और अब तुम्हें पवित्र करने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर राजा हंसध्वज ने पुत्र को हृदय से लगाया और कहा, बेटा मैंने पिता होकर भी तुझे अग्नि से तपाई हुए तेल में डलवा दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से अग्नि तुझे जला ना सकी ना। बस तुझे कड़ाहे में डालने की आज्ञा देने वाले मुझको निस्संदेह इस समय भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य भली भांति ज्ञात हुआ है। बेटा अब तू उठ और शीघ्र ही मेरे हृदय से लग जा। पुत्र तेरा कल्याण हो, अब तू तैयार हो जा और रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में अर्जुन के सारथी और मेरे प्रिय अतिथि श्री कृष्ण का मुझे दर्शन करा दे। तेरे प्रभाव से मैं कृष्ण का दर्शन और अर्जुन का दर्शन कर सकता हूँ। उत्तिष्ठ पुत्र भद्रम ते रथमारोह संगरे कृष्णम दर्श पार्थ सारथिम च मम अतिथिम। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि सुधर्मा जो है युद्ध करने के लिए आते हैं और बहुत जो है ना भयंकर युद्ध करते हैं। अर्जुन की सेना के बड़े बड़े जो सेना नायक हैं उन सबको परास्त कर देते हैं। अब जो है अर्जुन कहते हैं सुधर्मा से, महाबली वीर तुमने संग्राम में मेरे बहुत से वीरों को पराजित कर दिया है, इससे प्रतीत होता है कि महात्मा इंद्र की भांति तुम्हें बहुत अधिक बल है, क्योंकि पहले मुझे गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कुल गुरु कृपाचार्य और महामनस्वी कर्ण के साथ और काल खंज आदि बहुत से असुरों और स्वयं भगवान शंकर के साथ भी बहुत बार युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसा विस्मय मुझे उस समय नहीं हुआ था जैसा इस समय तुम्हारे युद्ध को देखकर हो रहा है। शंकर जी के साथ भी युद्ध किया लेकिन ऐसा विस्मय नहीं हुआ जैसा तुम्हारे युद्ध को देख करके हुआ। अब सुधर्मा कहते हैं, पार्थ आपने पहले संग्राम भूमि में जो लड़ाइयां लड़ी हैं उनमें जो विजय प्राप्त की है उसका कारण यह है कि उन युद्धों में आपके परम हितकारी भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हुए सारथी का काम करते थे, परंतु आज युद्ध में आप श्री कृष्ण विहीन हैं। देखा सुधर्मा कैसी कृष्ण की महिमा बता रहे हैं, इसी से आपको आश्चर्य हो रहा है। महाबुद्धि इस समय आपने श्री कृष्ण को त्याग कैसे दिया है? कहीं श्री कृष्ण ने तो मेरे साथ युद्ध करने में आपको नहीं छोड़ दिया? कुंती नंदन बताइए, आप मेरे साथ युद्ध करने में समर्थ हैं क्या नहीं? अगर कृष्ण आपके साथ नहीं है तो आप क्या मेरे साथ युद्ध कर पाओगे? अब देवता लोग आपके साथ होने वाले मेरे संग्राम को देखें। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी मैं आपको युद्ध में परास्त कर दूंगा। तो इसके बाद फिर काफी विस्तार से वर्णन हुआ है, सुधन्वा का अर्जुन के साथ में बड़ा घोर युद्ध हुआ है। तो आखिरकार क्या हुआ कि सुधन्वा ने एक अर्धचंद्रकार बाण से अर्जुन के धनुष और तीन बाणों द्वारा प्रत्यंचा और सारथी को भी काट दिया। कृष्ण नहीं थे सारथी, तो सारथी मार दिया अर्जुन का। फिर अत्यंत क्रोध होकर उस वीर ने अर्जुन को बाण विहीन कर दिया और उनसे कहा, पार्थ इस समय आपके सारथी भगवान श्री कृष्ण विद्यमान नहीं है, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं, आज आपका पुरुषार्थ कहां चला गया? आपने अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर बदले में साधारण सारथी की नियुक्ति कर ली है, आप मेरे सामने युद्ध में गिर पड़े हैं, अतः शीघ्र अपने श्री कृष्ण नामक सारथी का स्मरण कीजिए। तरहीनम पांडवम चा चक्रे वीरोति कोपितां उवाच पार्थम भगवान सारथस्ते न विदते सरेछतोसि पार्थ त्वं पौरुषं कागतं जते सर्वज्ञं सारथं त्यक्त्वा प्राकृता सारथि कृतां स्मरस श्रोतं कृष्णाख्यं ममाग्रे पतितो यसि। अब क्या हुआ, अर्जुन क्या करते? अर्जुन ने मनी मन जो ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया त्यों ही श्री हरि को अपने रथ पर बैठे हुए पाया। यावत स्मृति गोविंदम तावत दृष्टो रथे हरि। उस समय जब भगवान श्री हरि ने कहा, अर्जुन घोड़ों की बागडोर छोड़ दो, ऐसी बात कही, तब अर्जुन ने उन समागत श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर वे घोड़ों की बागडोर छोड़कर सावधान चित्त से सुधन्वा के ऊपर चारों ओर से भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण को विराजमान देकर सुधन्वा कहने लगा। सुधन्वा बोला, गोविंद अर्जुन के लिए पधारे हुए आपके दर्शन मैंने कर लिए, केशव मुझे आपकी सर्व व्यापकता का अनुभव हो गया। दृष्टस्तमसि गोविंद पांडवार्थे समागतम सर्वगत्वम सर्वगत्वम मया ज्ञातम तदेयम कलिकेशव। अब अर्जुन से क्या बोला, पार्थ अपने सारथी श्री कृष्ण को पाकर अब तो आप उस पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें, मैं आज युद्ध क्षेत्र में आप अपने पुरुषार्थ से सारे जगत को संतुष्ट कर दूंगा। तब अर्जुन ने कहा, आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को तीन बाणों द्वारा काटकर नीचे गिरा दूंगा, यदि श्री कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है, अब तुम अपनी रक्षा करो साथ ही अपनी प्रतिज्ञा भी सुनाओ। तो सुधन्वा बोला, पार्थ मैं श्री कृष्ण के समीप उनके सम्मुख ही आपके तीनों बाणों को काट दूंगा, यदि मैं आज उनके तीन टुकड़े ना कर दूं तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो। अब देखो दोनों भक्त हैं कृष्ण के, जैसे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं मत चित्त आसत्तम भव, मुझ में चित्त लगाओ हमेशा, तो सुधन्वा भी पूर्ण भक्त हैं कृष्ण के और अर्जुन भी, और दोनों ने विपरीत प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन ने कहा तीन बाणों से तुम्हारा सिर काट दूंगा और उसने कहा कि मैं आपके तीनों बाणों को काट दूंगा, और कृष्ण के सामने दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली है ना, और दोनों कृष्ण पर आश्रित हैं। अब क्या हुआ, इतनी बात कहकर सुधन्वा ने श्री कृष्ण के हृदय पर 100 बाण मार कर हृदय को विदीर्ण कर दिया और रथ को भी बाणों से उखाड़ दिया। अपने अस्त्र कौशल से श्री कृष्ण अर्जुन और घोड़ों सहित वह रथ कुम्हार के चाक की भांति वेग पूर्वक घूमने लगा। तब सुधन्वा ने अर्जुन को 10 बाणों द्वारा चारों ओर से ढक दिया, उसी क्षण एक दूसरा बाण मारकर अर्जुन के रथ को पृथ्वी पर 400 हाथ पीछे हटा दिया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम इस वीर सुधन्वा के बल पौरुष को देखो, अर्जुन तीन बाणों द्वारा इसका वध करने की प्रतिज्ञा तुमने व्यर्थ ही की है। कृष्ण कह रहे हैं, मुझसे बिना ही परामर्श के ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके तुमने पुनः दुस्साहस का काम किया है। जयद्रथ वध के अवसर पर तुम्हें जो जो कठिनाइयां उठानी पड़ी थी उन्हें तुम भूल कैसे गए? पार्थ तुम्हें अपने हित अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है, भला जिस रथ को मैंने क्रोध पूर्वक अपने दोनों पैरों से दबा रखा था उसे भी सुधर्मा के बाण ने आज 400 हाथ पीछे ढकेल दिया। सुधर्मा का एक पत्नी व्रत अत्यंत सुदृढ़ दिख रहा है, इस व्रत का पालन करने में तुम और मैं दोनों ही समर्थ नहीं है। एक पत्नी व्रत ना तो मैं हूं ना तुम हो, सुधर्मा एक पत्नी व्रती है, अतः मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इस युद्ध में निश्चय ही महान कष्ट की प्राप्ति होगी। अर्जुन का गोविंद मैं निश्चय ही तीन बाणों से सुधर्मा को रणभूमि में गिरा दूंगा, अब मेरे लिए महाकष्ट की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आपका सौभाग्यवान हो गया है। अर्जुन को पूरा विश्वास है कृष्ण पर, कृष्ण अर्जुन को निराश कर रहे हैं, अर्जुन को पूरा विश्वास है, नहीं आप हैं तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। गोविंद पातयाम्येनम त्रिर्बाणैर्न संदयाम अभविष्यन् महत्पृथ्वीम् न भवेन्यत्त्वमा तदागमः। अब अर्जुन ने बाणों से दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया। ये देखकर सुधर्मा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। मैं अपने बाण सहित धनुष को कपाता हुआ अपना भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, श्री कृष्ण, जिस प्रकार गायों की रक्षा के लिए आपने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया था, उस दिन अर्जुन की आप रक्षा कीजिए। आपने गोवर्धन पर्वत जैसे उठाया था, ऐसे अर्जुन की आप रक्षा करो आप, सुधर्मा कहते हैं। तब महाबाहु प्रतापी अर्जुन ने अपने धनुष पर एक काल के समान भयंकर बाण का संधान किया और क्रोध पूर्वक उसे सुधर्मा पर छोड़ दिया। उस बाण में भगवान गोविंद ने अपना पुण्य जोड़ दिया था। गोवर्धन पर्वत को उठाकर जो गौओं की रक्षा की उससे प्राप्त हुए पुण्य से उन्होंने उसी क्षण अर्जुन के बाण को संयुक्त कर दिया। अर्जुन के बाण में वो अपना पूरा पुण्य डाला। कौन सा पुण्य डाला? गोवर्धन पर्वत को उठाकर के गौओं की रक्षा की। कितनी गौओं की रक्षा की? करोड़ों करोड़ों गौओं की रक्षा की थी, तो उसका बहुत पुण्य है। गो हत्या का जितना बड़ा पाप होता है, गो रक्षा का उतना बड़ा पुण्य होता है। तो वो पुण्य जो है ना, उन्होंने उस बाण में रखा था। उस समय आकाश में देवता लोग अर्जुन और सुधर्मा का युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे और दल की दल अप्सराएं भी कौतुक देखने के लिए वहां आ गईं। संग्राम में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का हितकारक जानकर महाबली सुधर्मा ने कहा, मैं इस बाण को काट दूंगा। देखो, कृष्ण के विरुद्ध ही बोल रहा है और कृष्ण का भक्त है, इसलिए कृष्ण के विरुद्ध बोल रहा है। गोविंद, मैंने आपको भली भांति जान लिया है। देखो, भक्तिया माम भी जान आती या आवान निश्चास्मी तत्वता। 55वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भक्ति से मुझको जान लेता है कि मैं, मतलब भगवान छिपने का प्रयास करते हैं भक्त से और छिपाने का प्रयास करते हैं, और भक्त जान लेता है भक्ति के बल पर। तो उसने जान लिया अपनी भक्ति के बल पर। क्या? मैंने आपको भली भांति जान लिया है। क्या? कि आपने गोवर्धन का पुण्य उसमें बाण में रखा है। यूं कहकर सुधर्मा ने अपनी ओर आते हुए अर्जुन के बाण को लक्ष्य करके एक अर्धचंद्राकार बाण चलाया। उस बाण से वेग पूर्वक अर्जुन के बाण को काट डाला। वो बाण खंड खंड होकर भूतल पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस सुधर्मा के बाण चलाने की फुर्ती को देखकर समस्त देवता और सारी त्रिलोकी आश्चर्यचकित हो गई। पुनः जब अर्जुन दूसरा बाण संधान करने के लिए तैयार हुए, तब अर्जुन की सर्वथा रक्षा करने वाले श्री कृष्ण उस बाण को पृथ्वी दान के बहुत से जो पुण्य है वो सब उसमें रखे, दूसरे बाण में। अब सुधर्मा ने कहा, गोविंद, सुधर्मा सब समझ रहा है, देखो कृष्ण की चेष्टाएं वो सब जानता है भक्ति के द्वारा, और भगवान के विरुद्ध भी बोल रहा है, भक्त है, कहता है यद्यपि आपने अर्जुन की रक्षा के लिए इस बाण में अपना पुण्य लगा दिया है, तो अभी मैं आपके सामने अर्जुन के इस बाण को काटकर गिरा दूंगा। अर्जुनार्थम सुखम पुण्यम यदि गोविंद योजितम सायकेस्मिन समक्षम ते पाते अर्जुन सायकम। महाबली वीर अर्जुन, अब मेरी प्रतिज्ञा सुनो, यदि मैं आपके बाण के दो टुकड़े ना कर दूं तो आज मुझे अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की हत्या का पाप लगे। अब आप अपना पुरुषार्थ प्रकट करके बाण को बचाओ, अपने बाण को आप बचाओ। सुधर्मा कहता है, पार्थ, आप महान वीर और धन्यवाद के योग्य हैं जो आपके लिए युद्ध में भगवान श्री हरि स्वयं अपना पुण्य प्रदान कर रहे हैं, अवश्य ही आपका श्रेय बहुत अधिक है। फिर जैसे कृपण अपने धन को बड़ी कठिनाई से छोड़ता है, उसी प्रकार अर्जुन ने बड़ी कठिनाई से वो बाण सुधर्मा पर छोड़ दिया। कंजूस अपने धन को छोड़ता है ना, ऐसे अर्जुन ने छोड़ा कि दूसरा बाण वो भी बेकार चला जाएगा, तो बड़ी कठिनाई से छोड़ा अर्जुन ने। कंजूस, एक तीन ही बाण में मारना है तो दूसरा बाण भी अब बेकार जाएगा, तो बड़ी कठिनाई से अर्जुन ने छोड़ा। तब महाबली सुधर्मा ने अपने प्रबल पुरुषार्थ से शीघ्र ही अर्जुन के उस दूसरे बाण को भी बीच से काट डाला और अपनी सेना और अपने पिता को हर्षित करते हुए बलपूर्वक अपना संग बजाया। अब इस दूसरे बाण के कट जाने पर पृथ्वी देवी कांप उठी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम अभी बाण का संधान मत करो, अब मैं अपना पांच जन्य संघ बजाऊंगा, तुम अपना देवदत्त नामक संघ बजाओ। थोड़ा टालो अभी, तैयारी करो कुछ, अभी तीसरा बाण आखिरी बाण है, संघ बजाओ अभी, अभी अभी मत बाण, अभी जल्दी से मत छोड़ो, बेकार अपना बाण खराब ना करो। फिर मेरे साथ इस वीर सुधर्मा को देखो कि कितना प्रबल पुरुषार्थी है। अपने मुख से की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले मनुष्यों का जो सुंदर कीर्तियों के जीवन है वही प्रशंसनीय होता है। मैंने अपना पुरातन पुण्य प्रदान करके इसे रणभूमि में गिराने का प्रयत्न किया है, फिर भी तुम जैसे वीर के द्वारा भी इसका पतन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने पांचजन्य संघ बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक संघ को बजाया। और फिर श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन से कहा, पार्थ अब मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही बाण अपने हाथ में ले लो। तब महामनस्वी अर्जुन ने तीसरे बाण को हाथ में उठा लिया। उस समय वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उस बाण को देव अपने बल से संयुक्त करके सुदृढ़ करने लगे, बाण को अपना बल उसमें डालने लगे, बाण को सुदृढ़ करने लगे, मजबूत बनाने लगे कृष्ण। रामावतार के समय जो कुछ पुण्य किए सब उस बाण में रखे, राम अवतार में जितने पुण्य किए सब बाण में रखे। और फिर उस बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को रखा और बीच में शंकर जी को रखा और स्वयं में नोक में, बाण की नोक में स्वयं स्थित हो गए। तब अर्जुन ने उस बल संपन्न बाण का संधान किया, तब सर्वत्र हाहाकार मच गया। ये देखकर सुधर्मा कहने लगा, अब सुधर्मा समझ गया सब, वो भक्ति के बल से जानता है कृष्ण की हरकत है। सुधर्मा बोला, गोविंद मैं आपकी करतूत को जान गया हूं, मैं आपकी करतूत को जान गया हूं तथा युद्ध स्थल में मेरे वध के लिए अर्जुन की सहायता के उद्देश्य से विश्वरूप आप जो सहसा इस बाण में स्थित हो गए हैं इसका मुझे पता लग गया है। तुम्हारी कोई बात छिप नहीं पाती है मेरे से, मैं सब जान गया हूं। अच्छा पार्थ, अब आप श्री कृष्ण का स्मरण करके कुछ प्रतिज्ञा कीजिए। अब और प्रतिज्ञा करो अर्जुन, तुम क्या प्रतिज्ञा करते हो बोलो। जानामि गोविंद कृतम तदीयम रणेर्जुनार्थम सहसा वधो मे सरसितम विश्वतनुम भवंतम पार्थ प्रतिज्ञाम करो संस्मराद्य। तब अर्जुन ने कहा, वीर यदि आज मैं इस बाण के द्वारा तुम्हारे मुकुट सहित मस्तक को न गिरा दूं तो विष्णु और शिव में भेद रखने से जो पाप होता है वो सारा पाप मुझे लगे। सुधर्मा बोला, यदि मैं आपके इस बाण को काट ना दूं तो जो कोई भी काशी जाकर वहां मणिकर्णिका का तीर्थ में स्नान करके रात्रि के समय शिव जी की पूजा को पैरों से ठुकराता है उस पापी को जो पाप लगता है वही मुझे पाप लगे। तब अर्जुन ने उस अत्यंत प्रकाशमान बाण का संधान किया। अब देखो एक दूसरे के विरुद्ध दोनों प्रतिज्ञा कर रहे हैं और दोनों कृष्ण के भक्त हैं। अर्जुन कह रहे हैं इस बाण से तुम्हें तुम्हारा सिर काट दूंगा और वो कहता है कि मैं इस बाण को काटूंगा। अब उस बाण का संधान किया जो अग्नि की लपटें उगल रहा था जिससे भयभीत होकर आकाश में अप्सराएं भाग खड़ी हुई, देवता भी भागे उस बाण को देख करके। उस बाण के भयंकर शब्द से सभी बाजे नष्ट हो गए, बाण का इतना भयानक शब्द था कि बाजे सब नष्ट हो गए और सारा भूमंडल भ्रांत हो गया, लेकिन सुधर्मा मोहित नहीं हुआ। तब क्रुद्ध होकर अर्जुन से कहने लगा, पार्थ यदि इस महायुद्ध में आपके निमित्त शिव आदि समस्त देवता मुझसे इस बाण की रक्षा करें तो भी मैं इसे अभी काट गिराऊंगा, इसमें संशय नहीं है धनंजय। यदि मैं मर जाऊं तो राजा हंसध्वज को लज्जित होना पड़ेगा और मेरी माता भी बहुत दुखी होगी तथा विशाल नयनी मेरी वह भार्या प्रभावती भी मेरी निंदा करेगी। जनार्दन, अब देखो भगवान से कह रहा है, जनार्दन अर्जुन के रथ पर सारथी रूप में विराजमान आपको मैं नरसिंह ही समझ रहा हूं। इस समय आपको युद्ध स्थल का परित्याग करके हटना नहीं चाहिए। गोविंद ठहरिए और युद्ध कीजिए। पार्थ आप भी अपना पुरुषार्थ प्रकट कीजिए। निसिंघम त्वामहं वेन्मि पार्थस्य रथसारथिं न परित्यज्य गन्तव्यम् अस्मिन् काले जनार्दन तिष्ठ गोविंद युद्धस्व त्वं पार्थ कुरु पौरुषम्। इतना कहकर सुधर्मा ने भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण करके अर्जुन के उस बाण को काट दिया। देखा, काट दिया। सुधर्मा द्वारा बीच से कटे हुए उस बाण का आधा भाग पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसे प्रभावशाली बाण के कट जाने पर वहां महान हाहाकार मच गया और सुधर्मा युद्ध स्थल के मध्य में खड़ा होकर अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने लगा। उस बाण के नष्ट हो जाने से चंद्रमंडल भी कंपित हो उठा। चंद्रवंशी अर्जुन के पूर्व चंद्रमा सजल होते हुए भी निर्जल हो गए, ये एक अद्भुत सी बात हुई। फिर भी उस बाण के आधे भाग ने उछल कर, अब देखो क्या हुआ, आधा भाग जो है उछल करके सुधर्मा के उस सुंदर मस्तक को काट देता है जो दमकते हुए कुंडलों से सुशोभित, दमकते हुए कुंडलों से सुशोभित था। दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब क्या हुआ, सुधर्मा का वह कटा हुआ सिर आनंद के साथ, देखो सिर आनंद के साथ केशव राम नरसिंह आदि भगवान नामों का उच्चारण करता हूं तुरंत ही श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा। देखो कहां तो सुधर्मा था और कहां कृष्ण थे। अर्जुन के बाण ने सुधर्मा का सिर काटा और आनंद के साथ उसका सिर कृष्ण के नामों का उच्चारण करता हुआ कहां पर पहुंचा, कृष्ण के चरणों पर पहुंचा। तच्छिन्नम त्वरितम प्राप्तम श्रीरा कृष्ण पदाम्बुजम जपत केशव रामेति निसिंहेति मुदायुतम। उधर उसका मस्तक रहित धड़ उस युद्ध भूमि में बड़े वेग से चक्कर काटने लगा। अब देखो उसका जो धड़ है मस्तक तो कट चुका है लेकिन उसका शरीर जो है युद्ध भूमि में चक्कर काट रहा है और हाथ में आए हुए घोड़े हाथी और रथों को पकड़कर वेग पूर्वक पटकने लगा। और अर्जुन की बहुत सी सेना का संहार कर दिया बिना सिर के जो मस्तक था। तत्पश्चात भगवान केशव ने अपने चरणों में पड़े हुए सुधन्वा के सुंदर मुख वाले सिर को देखते हुए उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया। भगवान जो है उसके सिर को अपने दोनों हाथों से उठाते हैं। गृहीतम तच्छिरोरम्यम केशवेन पदेस्थितम उभाभ्याम अपि हस्ताभ्याम सुमुखम पश्यता तदा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सुधन्वा ने अपने क्षत्रियोचित कर्म के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। उनके पिता हंसध्वज भी कितने भक्त थे कि अपने पुत्र को प्रोत्साहन दे रहे थे कि श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करो। ऐसे महान भक्त जीवन और मरण को समान समझते हैं, उनके लिए जीवन और मरण में कोई अंतर नहीं है। उनकी एकमात्र कामना यही रहती है कि वे सदा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। सुधन्वा ने अर्जुन के बाण से सिर कटने पर भी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण राम केशव नृसिंह इस प्रकार भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अपना सिर श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा के श्री श्री गोंडदाय भगवान के श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। धन्यवाद। हरे कृष्णा।